गीता से अपने जीवन में शिक्षा लिया है। और हमारी संस्था जो है इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इसको श्रील प्रभुपाद ने जब स्थापन किया, ये पहली ग्रंथ जिसके ऊपर उन्होंने जोर दिया वो ये श्रीमद् भगवद गीता है। और श्रीमद् भगवद गीता में हर एक इंसान के लिए उसके जीवन में जो कर्म को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से कर्म को करना चाहिए, हाँ, कैसे जीवन यापन करने से हमें हमें इस दुनिया से उद्धार होकर हम हमारे असली स्थिति में, स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं, ये ऐसे चीज़ बहुत गूढ़ चीज़ जो है ये भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है। पहले पहले हमें ये बात जान लेना चाहिए कि हम कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर हम जो पढ़ते हैं भौतिक ज्ञान के संबंध में, अर्थ भूमि रापो अनलो वायु कम मन बुद्धि अहंकार, इन चीज़ों के बारे में, ये सब भौतिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में जितना भी हम पढ़ाई करें वो आत्मा के लिए लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे बोला जाता है शरीर के लिए सुख, मन के लिए शांति और आत्मा के लिए आनंद, ये आत्मा के लिए जो आनंद जो है वो भौतिक पदार्थ को जितना भी शोधन करे, पढ़ाई करे, उससे हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा की जानकारी है, आत्मा क्या चीज़ है, भगवान कौन है, हमारा नाता क्या है भगवान के साथ, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता को ब्रह्म विद्या नहीं तो राज विद्या ऐसे कहला गया है भगवद गीता को। इसलिए भगवद गीता में खुद भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है और इसको हमें नावल के समान पढ़कर हमें फेंक नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम नावल को पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान जो है ये पूजनीय है, और पूजनीय नहीं लेकिन जीवन में लागू करने के लिए भी लायक है। हाँ, ये पहला पाठ हम सीखते हैं। वेर एवर देर इज कृष्णा देर विल बी ऑपुलेंस, विक्टरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर एंड मोरालिटी। जिधर भी कृष्ण होते हैं उधर जरूर ऐश्वर्य होगा ही, ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला गया है भगवद गीता में। आपको मालूम होगा महाभारत में ऐसे कथा आता है, जब दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को बोला कि ये पांडवों को आप भेज दो वारणावट में, और उधर एक महल में रखा गया था उनको, पांडवों को वो महल को जलाने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने, उसमें पांडव लोग बच गए भगवान की कृपा से, और बचकर वो आगे चले गए, मालूम नहीं था कौरवों को। लेकिन आगे जाकर उसके बाद अर्जुन ने ये द्रुपद के सभा में जो स्पर्धा हुई उसमें उसमें जीत कर द्रौपदी को प्राप्त किया उन्होंने। उस समय दुर्योधन को पता चल गया कि पांडव लोग अभी भी जिंदे हैं, जीवित हैं। उनको डर हुआ कि शायद पांडव लोग वापस आकर हमारे साथ लड़ाई करके सब राज्य को छीन लेंगे। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या बोला अपने पिताश्री को, धृतराष्ट्र को, पांडवों को भी थोड़ा बहुत जमीन दे दो ताकि वो लोग शांति से रहेंगे, उनको बुलाओ, बुलाकर थोड़ा जमीन दे दो उनको। तो धृतराष्ट्र ने उनको एक जमीन दिया, ऐसे उसका नाम है खांडव प्रस्थ। तो खांडव प्रस्थ एक तरह का पूरा बबूल के जंगल है, उधर कुछ भी दूसरे पेड़ पौधे उगते नहीं थे, उधर कोई जीते नहीं, उधर रहते भी नहीं थे कोई आदमी, उधर सिर्फ जानवर राक्षस वो सब रहते थे, वो जंगल में पूरा जंगल ही जंगल था। ऐसे ये एक मरुत स्थान को, जैसे एक रेगिस्तान के समान ऐसे एक स्थान को दिया गया, किसको, पांडवों को। जरा देखिए क्या इनका मेंटालिटी था हमारे दुर्योधन का। लेकिन ऐसे जमीन को भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण और अर्जुन वो पूरे जंगल को काट डाला, अग्नि के द्वारा खत्म कर दिया उसको, और उधर माया दानव के द्वारा एक ऐसे ही एक शहर उन्होंने निर्माण किया उधर, इतना मशहूर शहर हो गया वो, उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। खांडवप्रस्थ बदल कर क्या बन गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, क्योंकि जिधर कृष्ण का हाथ लग जाता है उधर तुरंत सब बदल जाते हैं। इसलिए बताया गया कि ऐश्वर्य आ जाता है जब कृष्ण अपने ध्यान देते हैं, कृष्ण के द्वारा ही हुआ वो ऐसे। ऐसा बताया जाता है कि हस्तिनापुर के जो भी बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण थे वो सब इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे, जो बहुत शक्तिशाली क्षत्रिय और जो बहुत धनी वैश्य और जो बहुत ईमानदार नेक शूद्र सब लोग इंद्रप्रस्थ की ओर जाने लगे सब लोग। हाँ, इस तरह ऐश्वर्य बढ़ गया इंद्रप्रस्थ का, पांडवों का। इस तरह बताया गया है, इधर जिधर कृष्ण रहते हैं उधर विजय भी प्राप्त होता है। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, ऐसा बताया गया है कि पांडव लोग, जिस पांडव लोगों के पक्ष में कौन थे, भगवान कृष्ण थे। देखिए पांडव 5 और कौरव 100, लेकिन विजय प्राप्त हुआ पांडवों को। कारण क्या है, कृष्ण उनके पक्ष में थे। इस तरह हम समझ सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला सुखदेव महाराज को कि मेरे दादा लोग जो थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये लोग तो छोटे मोटे मछलियों के समान हैं, और जो कौरवों के पक्ष में थे बड़े बड़े लोग, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और ऐसे लोग धृतराष्ट्र, तो इन लोगों के सामने करके कैसे मेरे दादा लोगों ने विजय प्राप्त किया। क्योंकि कभी कभी समुद्र में बड़ा तिमिंगल रहता है, एक तिमिंगल अनेक बड़े बड़े मछलियों को खा लेता है वो। इस तरह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे बड़े लोगों के युद्ध में कैसे मेरे दादाजी अर्जुन सफल प्राप्त किया उन्होंने। तो सुखदेव उसमें बताते हैं ये कृष्ण ही कारण है, कृष्ण होने के कारण उनको विजय प्राप्त हुआ। तो पांडव लोग कम मात्रा में थे, फिर भी भगवान की मदद से उनको विजय प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं कृष्ण की इतना शक्ति है कि उन्होंने चक्र से सूर्य को भी ढक दिया जयद्रथ को मारने के लिए। तो इस तरह भगवान कृष्ण जो है हमारे तकदीर को भी बदल सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। इसलिए पांडवों को उन्होंने विजय उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ। और बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तो इस तरह की असीम शक्ति प्राप्त हुआ अर्जुन को भगवान के द्वारा। ये कैसे मालूम हुआ अर्जुन को, ये कुरुक्षेत्र युद्ध पूरे होने के बाद भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन अभी तुम रथ से नीचे उतर जाओ तुम। तो अर्जुन ने भगवान को बोला, भगवान आप पहले उतर जाओ, मैं बाद में उतरूंगा। तो भगवान ने बाद में उनको बोला, नहीं आप पहले उतर जाओ। तो अर्जुन उतर गए। उसके बाद जब भगवान भी उतर गए रथ से, रथ तुरंत बहुत बड़ा ज्वाला आया उधर रथ में, इस तरह रथ जलकर राख हो गया एक क्षण में। तो अर्जुन ने पूछा भगवान को, ये क्या इस तरह का विचित्र चीज़ हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो भगवान ने बोला उनको, देखो तुम्हारे वैरियों ने इतने तरह तरह के सेलेस्टियल, जो स्वर्ग जैसे स्वर्ग स्वर्ग से प्राप्त हुआ जो अलग अलग तरह के आयुध होते हैं, इसको भेजा है, और तुम्हारे रथ में इतने अनेक तरह के शस्त्र थे, लेकिन मैंने तुमको इन चीज़ों से बचाया था मैंने, लेकिन जब हम दोनों उतर गए इसलिए वो पूरा रथ राख होकर जल जल गया। तो इस तरह भगवान ने उनको दिखाया कि अपने भक्त को भगवान ने रक्षा भी किया, साथ साथ अपने भक्त को उन्होंने शक्ति भी प्रदान किया अपने दुश्मन को सामना करने के लिए। और भगवान कृष्ण जब लौट गए तभी अर्जुन को पता चला कि उनके अंदर जो भी शक्ति था सब चला गया। उसके बाद जब शक्ति चाहिए था तभी भगवान ने दिया उनको, जिस शक्ति के द्वारा वो पांडव ये कौरवों को जीत सकते हैं। लेकिन जब युद्ध युद्ध हो गया पूरा, उसके बाद भगवान ने वो सब सारे शक्ति वापस ले लिया अर्जुन से। इस तरह असीम शक्ति भगवान कृष्ण से ही आता है। जैसे प्रभुपाद जी सारे दुनिया में जाकर प्रचार किया उन्होंने, इतने बूढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, ये साधारण इंसान कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद जी को शक्ति, कृष्ण शक्ति किसने दिया, कृष्ण खुद देते हैं। और कृष्ण ने प्रभुपाद जी को नाव में, वो जलदूत के जहाज में दर्शन देकर कृष्ण ने बोला उनको, तुम चिंता मत करो, तुमको 2 बार हार्ट अटैक हो गया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम आगे जाओ अमेरिका, तुम प्रचार करो, मैं साथ में रहूँगा तुम्हारे साथ। इस तरह भगवान उनको शक्ति देते हैं। और बोलते हैं मोरालिटी, ये भी रहता है। ये सारे युद्ध जो हुआ, ये कुरुक्षेत्र युद्ध, ये साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। और जो भी अधर्मवादी राजा लोग थे वो सब लोग कौरवों के पक्ष में ज्वाइन कर लिया उन्होंने, और जो लोग धार्मिक राजा थे वो सब पांडवों के पक्ष में ज्वाइन कर लिया। ये भगवान की एक बड़ा आयोजन था। जैसे जो किसान होता है वो अपने खेती में फसल काटता है ना, इस तरह वो कभी कभी घास फूसों को निकाल देता है ताकि जो दाने का जो घास है वो अच्छी तरह वो बढ़ सकता है। इस तरह कृष्ण ने भी ये कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जो अधर्मिक राजा लोग थे उनको मार डाला, अधर्म को खत्म करने के लिए। इस तरह भगवान जिधर रहते हैं उधर धर्म का, भगवान तो धर्म के स्रोत्र हैं, वो धर्म का स्थापन करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये पहला लेसन हमने सीखा जो ये श्लोक के द्वारा, यत्र योगेश्वर के श्लोक के द्वारा। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, अगर भगवान भगवान के बिना कोई भी व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है, उसके अंदर जितना भी लक्षण हो वो एक शून्य के समान है। बहुत पढ़ाई है किसके पास, वो ही एक शून्य है। और भी उसके पास बहुत धन है, वो और एक शून्य है। और बहुत चतुर है, वो और एक शून्य है। इस तरह आप शून्य को गिन सकते हैं, जितना भी शून्य हो शून्य शून्य ही है ना। लेकिन जब आप भगवान को लगाते हैं सामने, वो एक को लगाने के समान है। ऐसे प्रभा जी बोलते थे, क्योंकि इस दुनिया में अनेक लोगों के अंदर चतुरता है। जैसे दुर्योधन बहुत बुद्धिमान था, उसके अंदर बहुत ही चतुरता थी, चालाकी थी। इतना होने के बाद क्या क्या चालाकी किया उसने, जैसे आपने ड्रामा में देखा, उसने मन में योजना बना लिया था, देखो ये कृष्ण तो आयुध भी लेके नहीं आने वाला है, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। उसने सोचा कि मैं नारायण सेना को मैं ले लूँगा। इस तरह मद्रास के एक राजा था शल्व नाम का, शल्य शल्य नाम का, उसको भी धोखा दे दिया दुर्योधन ने। धोखा देकर अपने पक्ष में ले लिया उसने। कर्ण को भी ऐसे ही उसके अहंकार को बढ़ाकर अपने पक्ष में ले लिया दुर्योधन ने। इतना चालाकीपन होने के बाद भी वो जीत नहीं पाया, हार प्राप्त हुआ उसको, पराजय प्राप्त हुआ, क्योंकि कृष्ण नहीं थे उसके पक्ष में। तो आधुनिक आदमी जो है वो बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, भगवान को निकाल दो और हमारे खुद की परिश्रम से हम इस दुनिया को सुखी करेंगे, इस तरह अलग अलग तरह तरह के ऐशोआराम को बढ़ाकर। लेकिन इस दुनिया में कभी भी कोई भी आनंद से नहीं जी सकते हैं जब तक अपने जीवन के केंद्र बिंदु नहीं बनाते हैं भगवान कृष्ण को। दूसरा लेसन है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये भगवान बताते हैं, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये भारत में अनेक लोग ये श्लोक बोलते हैं, लेकिन उनको इसका सही मतलब क्या है उनको मालूम नहीं है, इसलिए हमने ये भी एक लेसन इंक्लूड किया है इधर। तो अनेक लोग बोलते हैं हमारे जीवन को हमने भगवान को सौंपा दे दिया है, जो भगवान चलाते हैं हमारे जीवन को। एक दिन एक महाराज जी आए थे इधर हमारे मंदिर में, जयद्रथ स्वामी नाम के। तो उनके सामने में एक भक्त को लेकर आया, एक नया आदमी आया था उसको लेकर आया था। तो महाराज ने उनको पूछा, तो आप आते हैं मंदिर में रेगुलर? तो बोले कि जब भगवान बुलाते हैं हम आते हैं, वो भगवान की मर्जी, ऐसे बोला उन्होंने। तो जयदेव स्वामी ने बोला, उनको स्ट्रांगली बोला, देखो भगवान की मर्जी क्या है वो भगवान पहले से बोल दिया, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु, सदा 24 घंटा मेरा स्मरण करो, और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान ने बोल दिया कि तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ। तो उन्होंने बोला कि भगवान तुमको हर दिन बुला रहे हैं मंदिर में, ऐसा मत बोलो कि भगवान जब बुलाएंगे मैं आऊँगा। तो इस तरह कुछ लोग धंधे नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, और क्या है बोलते हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और कुछ लोग हैं अपने को बहुत सतर्क मानते हैं और अपने को बहुत सक्षम मानते हैं, और अपने वो सोचते हैं कि मैंने इस तरह मेरे जीवन में प्रगति किया है, इस तरह कुछ लोग सोचते हैं। इसको समझने के लिए भगवान बोलते हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इसका मतलब क्या है, आप कृष्ण अर्जुन को देखिए, वो रथ में खड़े हैं अर्जुन। एक ओर से देखा जाए तो अर्जुन ने ये घोड़े के जो क्या बोलते हैं उसको, लंगड़ बोलते हैं, लगाम लगाम बोलते हैं, लगाम लगाम लगाम, घोड़े के लगाम को दे दिया कृष्ण के पास। हे कृष्ण आप ही चलाओ मेरे रथ को, आप जिधर लेके जाओगे मैं उधर जाऊंगा, उनके हाथ में दे दिया। और दूसरी ओर से ऐसा नहीं कि अर्जुन रथ के अंदर जाकर सो गए, वो भगवान को सब दे दिया और वो सोने लगे उधर, ऐसा नहीं। वो भी अपने हाथ में गांडीव लेकर, बाण लेकर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इस तरह हम लोग भी अपने जीवन में हमारे जो परिश्रम कर सकते हैं वो करना चाहिए, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि अंत में भगवान ही सैंक्शन करने वाले हैं, अनुमति देने वाले हैं किसी भी चीज़ को। हाँ, जब भगवान अनुमति नहीं देते हैं हमारे जीवन में, हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे इधर समझाया गया है इधर कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जो है उसका बुद्धिमत्ता अलग है, हाँ, उसके पास धन दौलत अलग है, हाँ, उसके इन्फ्लुएंस, उसकी दूसरों के ऊपर अपने शक्ति लगाने की शक्ति जो है वो भी कम है, अलग है। तो इस दुनिया में कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा ऐश्वर्य है, कुछ लोगों के पास कम ऐश्वर्य है। हाँ, सम ऑफ अस आर मोर टैलेंटेड, सम ऑफ अस आर लेस टैलेंटेड, समबडी हैज़ मोर ब्रेन, समबडी हैज़ लेस ब्रेन, समबडी हैज़ मोर मनी, समबडी हैज़ लेस मनी। लेकिन हमारी ओर से, हम ईमानदारी से जो भगवान ने जो नियत कर्म हमारे लिए दिया है, हाँ, उन विधि विधानों को पालन करते हुए हमें करना चाहिए और भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि अंत में देखा जाए तो भगवान ही सब चीज़ों के नियंत्रण करता है। जैसे अर्जुन युद्ध जो करने वाला था, भगवान ने उसको समझाया कि देखो तुम्हारे शक्ति से ये युद्ध होने वाला नहीं है, मैं इन लोगों को पहले से मार दिया मैंने, और उन्होंने दिखाया द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च, देखो द्रोण भीष्म जयद्रथ ये सब लोग मरकर मेरे विश्वरूप के मुखों के अंदर जा रहे हैं। भगवान ने दिखाया उनको बड़ा बड़ा विश्वरूप दर्शन दिखाया भगवान ने, और उनके मुख के अंदर कौन जा रहे थे, द्रोण भीष्म जयद्रथ कौरव सब जा रहे थे उनके मुखों के अंदर। तो भगवान ने बोला कि मैंने मार दिया इन लोगों को पहले से, लेकिन तुम निमित्त बनकर तुम इनको मारे हो, ऐसे बोला भगवान ने। इसे हम क्या समझते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे घर में इतना समस्या है, आर्थिक समस्या है, और बच्चों का पढ़ाई ठीक हुआ होता नहीं है, और हमारा धंधा ठीक नहीं होता है, इसलिए हम पहले हम इन चीज़ों को सेटल करेंगे, बाद में हम मंदिर में आएंगे, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे। लेकिन जितना अभी आपके जीवन में आप परिश्रम करो उसको आप सेटल नहीं कर पाओगे जब तक भगवान के आशीर्वाद नहीं है आपको आपके जीवन में। क्योंकि भगवान बताते हैं कि आपकी जो तकदीर है मैंने ही लिखा है, आपको जो तकलीफ होने वाला है वो मुझे मालूम है पहले से, इसलिए तकलीफों में हमें क्या करना चाहिए, भगवान का और भी आश्रय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद को सक्षम मानकर उनको सुलझाने के लिए जाएंगे। इस दुनिया की समस्या तो लहरों के समान है, वो आता रहेगा, वो कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर उसको हमें बंद करने के लिए हम, अगर कोई व्यक्ति है मूर्खता से बोलेगा कि मैं लहरों को पहले बंद करूंगा उसके बाद मैं नहाऊंगा, तो होने वाला नहीं है कभी वो। हाँ, इसलिए समझना चाहिए कि भगवान के हाथ में है, मैं जो करना है मैं करूंगा करूंगी, और अंत में भगवान को हम छोड़ देंगे। हाँ, ये समझना चाहिए हमें। जैसे उदाहरण दिया है इधर, तो बच्चा जो है जो माँ के गर्भ में होता है वो कितना निस्सहाय है। हाँ, उसका शरीर कैसे बढ़ता है किसी को पता नहीं, माँ का भी पता नहीं, लेकिन अंदर वो बढ़ता है। इस तरह हमारे मुंह में भी जो एक दो दांत आते हैं, बाद में धीरे 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 बढ़कर वो 32 दांत आ जाते हैं, लेकिन हम खुद करते नहीं, वो अपने आप आ जाता है वो। तो यह सब चीज़ भगवान के नियंत्रण में है, और गॉड नोज द बेस्ट। तो भगवान को मालूम है हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा भी हो, शायद वो भगवान का आयोजन है। जैसे इधर एक कथा दिया है, एक आदमी था, रात को सो रहा था वो, तो ऊपर से एक ईंट गिर गया उसके माथे में, तो खून निकलने लगा, तो पड़ोस के लोग तुरंत आकर उसको पकड़ कर एक ऑटो में बिठा कर उसको लेके गए अस्पताल में। तो सारे मार्ग में वो चला रहा था, मुझे अस्पताल नहीं जाना है क्योंकि डॉक्टर बड़ा बिल दे देगा मुझे, मैं बर्न बर नहीं पाऊंगा मैं, ऐसा रो रहा था। लेकिन उसको अस्पताल में लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि बड़ा घाव लग गया उसको माथे में, उसको स्टिच लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने स्टिच लगाया उसको, स्टिच लगाते समय ये आदमी चिल्लाते रहा वो, डॉक्टर पहले से बोल दो बिल कितना होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, लेकिन डॉक्टर ने बोला वो बाद में बताऊंगा, अभी तुम चिंता मत करो। हाँ, तो रात को उसको रख दिया अस्पताल में। दूसरे दिन सुबह जब बिल आया, देखा उसने 500 रुपया, तो रोने लगा, इसलिए मैंने बोला कि अस्पताल में नहीं टारूंगा। तो दूसरे आदमी आकर बोला, उसको न्यूज़ दिया, अरे तुमको मालूम है तुम्हारा घर का जो सीलिंग जो है वो रात को बारिश में टूट कर पूरा गिर गया नीचे, ऐसे बोला। तभी आदमी को पता चला कि अगर मैं घर में रहता तो मैं मर जाता पूरा ऐसे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान अगर हमारे जीवन में तकलीफ भी देते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है, हमारी भलाई के लिए ही भगवान देते हैं। जैसे एक मूर्ति बनाते समय एक चिजल और हाथ में एक हैमर लेकर मूर्ति बनाते हैं ना, लेकिन मूर्ति बनाते समय कितना उसको मारता है, मार 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 कर अंत में एक सुंदर मूर्ति निकलता है। इस तरह भगवान भी हमको जीवन में मार मार कर हमको सही लाइन पर लेके आते हैं भगवान भी हा? क्योंकि हमको जितना तकलीफ नहीं होगा जीवन में उतना हम नशे में पड़ जाएंगे हा? इसलिए जो तकलीफ आता है हमारी भलाई के लिए आता है, इस तरह हमें समझना चाहिए। भगवान को मालूम है सही क्या है। तो तीसरा लेसन हम सीखते हैं, ये दूसरा अध्याय भगवान बताते हैं कि अर्जुन तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो जो मांस से हड्डी से खून से बनाया गया चीज़ है, हा? ये तुम नहीं हो, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम भगवान के एक दास हो और सच्चिदानंद विग्रह हो तुम। हाँ, ये महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इससे कितना समस्या को हम सुलझ जा सकते हैं। जब इंसान सोचता है कि मैं शरीर हूँ, इसलिए क्या करता है, इतना कठोर परिश्रम करता है, पैसा जमा करता है, क्योंकि वो सोचता है कि मृत्यु के समय सब खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसे सोचता है। भगवान ने बोला कि तुम खत्म नहीं होगे, क्योंकि आत्मा मरता नहीं। हाँ, और यह शरीर जो है ये एक तरह का बैग है, जैसे कैरी बैग जो होता है, कैरी बैग इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैरी बैग के अंदर जो रखा गया है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, जैसे सोना चांदी जो रखते हैं एक डब्बा के अंदर, डब्बा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, वो सोना चांदी है। इस तरह ये शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है वो अमर है, वो भगवान ने सिखाया उसको। तो ये जो शरीर जो हम देखते हैं आंखों से, ये पंचमहाभूतों से बना गया है, भूमि रापो नलो वायु कम्बनो बुद्धिरे वच अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृति दृष्टदा। तो भगवान ने बोला कि ये भूमि रापो नलो वायु कम, ऐसे पंचमहाधातुओं से बना गया है शरीर, और ये जीवित नहीं है, ये मृत शरीर है। और इसके अंदर और एक शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से बनाया हुआ सूक्ष्म शरीर है, और वो भी भौतिक धातुओं से बनाया गया है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो है, जो पीला पीला रंग से दिखाया गया है, वो आत्मा है जो सच्चिदानंद से बनाया गया है, और ये आत्मा ही तुम हो और तुम्हारे ऊपर ये दो आवरण है। अगर तुम आत्मा को समझोगे, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे दूसरों से, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन लंबा है, कौन धनी है, कौन गरीब है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, ये सब हम नहीं देखेंगे। आत्मा ये सब चीज़ों से परे है, और गुणात्मक रूप से आत्मा सब शरीर में जो आत्मा है वो एक समान है, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सब शरीरों में बैठा हुआ आत्मा गुणात्मक रूप से एक समान है। और ये ज्ञान बहुत दुर्लभ ज्ञान है, कहीं भी आप सीखेंगे नहीं इसको। हाँ, तो भगवान ने सिखाया कि कभी भी तुम ऐसे जीवित शरीर को देखते हो, समझो कि इसके अंदर एक आत्मा बैठा है। और हम कैसे जानेंगे क्या जीवित है क्या अजीवित है, आई कैसे हम जान सकते हैं? तो भगवान बोलते हैं कि जो जीवित शरीर है उसमें 6 तरह का परिवर्तन होता है। पहले जन्म होता है और वो शरीर बढ़ता है और वो मेंटेन होता है, उसके बाद वो बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो घट जाता है और मृत्यु आता है। ये 6 तरह का परिवर्तन सिर्फ जीवित शरीर में होता है, ऐसे भगवान बताते हैं। जैसे मैक है, इसमें ये 6 तरह का परिवर्तन होता नहीं है, सिर्फ ये घटता है, बस घट कर ये खत्म हो जाता है। लेकिन जीवित शरीर में आप ये सब देखेंगे, बर्थ ग्रोथ मेंटेनेंस बाय प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स ड्विंडलिंग एंड डेथ, और इसमें चेतना हम देख सकते हैं जीवित शरीर में। तो भगवान ने बहुत मशहूर श्लोक बोला, सब लोग दोहराइए, देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम शोक नहीं करोगे, शोकामग्न नहीं हो जाओगे, कब? जब तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। हाँ, शरीर के लिए जो भी समस्याएं होते हैं वो आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा वो परतत्व है। और ये शरीर के बाद शरीर बदलता है। इस शरीर में हमारे एक माता पिता होते हैं और अगले जन्म में नए माता पिता दिए जाएंगे हैं, और पूर्व जन्म में और कुछ कोई माता पिता थे हैं, तो हम परिवर्तन होता जाता है आत्मा का। और इस जन्म में भी हमारा शरीर बदलता है, बचपन से युवक अवस्था, युवक अवस्था से बुढ़ापा आता है। तो ये बदलने वाले शरीर है, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करते हो, भगवान बताते हैं। तो जैसे कोई आदमी कपड़ा पहनता है और अगले दिन उस कपड़े को निकल कर और नया कपड़ा पहनता है, इस तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। जैसे आप देखते हैं इधर आदमी बूढ़ा बूढ़ा होता जाता है और मर जाता है, बीच में एक हड्डी दिखा गया है, तो उसका मतलब क्या है, मृत्यु होता है उसको और आगे दूसरे योनि में जाकर जन्म लेता है वो, और इस तरह उसका शरीर बदलता जाता है ऐसे। और ये कि मनुष्य शरीर ही नहीं, लेकिन कभी कभी उसको जानवरों का पक्षियों का अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। क्या काम है, क्लिक या सचवन इधर दिखाया गया है, इधर कैसे आत्मा अलग अलग शरीर में प्रवेश करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस तरह आत्मा अलग अलग शरीर बदलता जाता है। तो शरीर एक कपड़ा के समान है, और चौथा लेसन है, ये तीसरे अध्याय में आता है ये लेसन। हम सब लोग बोलिए, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान ने बताया अर्जुन को, अर्जुन हम जो भी कार्य करते हैं दुनिया में उसको भगवान विष्णु कृष्ण के एक तरह के सैक्रिफिस के रूप में करना चाहिए। हाँ, यज्ञ अर्थात कर्मण है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। बहुत बहुत सरल है, तुम जो भी कर्म करते हो भगवान के लिए करना चाहिए, नहीं तो उसे बंधन होता है। तुमको बताते हैं इसका कारण क्या है। हम इस भौतिक दुनिया से जो भी हम लेते हैं ना, जैसे हवा लेते हैं श्वास लेने के लिए, पानी पीते हैं, धान्य खाते हैं, सोना चांदी लेते हैं, नवरत्न लेते हैं, ये सब जो लेते हैं ये सब चीज़ों को हमने सृष्टि नहीं किया है। अभी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्री होता है, लेकिन वो लोग किधर से लेते हैं सब धातुएं, वो भूमि से लेते हैं, खान से लेते हैं। तो भगवान से जो हम लेते हैं, अगर उसको लेकर हम खुद की इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय तर्पण में लगाएंगे उन चीज़ों को, तो हमें पाप लगता है। तो भगवान बताते हैं कि पहले मुझे तुम्हें क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। जैसे हम जो भी खाते हैं पहले भगवान को भोग चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रसाद के रूप में खाते हैं। अगर हम कुछ वेतन आमदनी कमाते हैं तो उसमें से एक अंश को हम भगवान को देते हैं, तो वो पूरा जो हम कमाते हैं वो शुद्ध हो जाता है। इस तरह दिन में एक समय, जैसे सुबह का समय 2 घंटा भगवान का नाम हम जपते हैं, इससे पूरा दिन दिव्य बन जाता है। इस तरह हम हमारे सारे समय को हम दिव्य बना सकते हैं, एक दिन के एक समय, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त को हम भगवान के लिए अर्पण करने से, भगवान का नाम जपने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई वैश्य है, बिजनेस करता है, तो अपने बिजनेस से जो कमाए हुआ आमदनी जो है उसमें से एक पोर्शन को भगवान को अर्पण करेगा, तभी वो पूरा उसका पैसा शुद्ध होता है। इस तरह खाते समय भी हमें भगवान को भोग चढ़ाए बिना खाना नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत भगवान को भोग चढ़ाकर और उस प्रसाद को दूसरे प्रसाद से मिलाने से क्या होता है, सब सारा प्रसाद हो जाता है। इस तरह भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अनेक लोग हैं इस दुनिया में, वो इंद्रिय तर्पण में लगे हुए हैं सब चीज़ों को लेकर, वो लोग चोर हैं, भगवान बताते हैं। ये प्रहलाद का है, जैसे प्रहलाद ने बताया बताया अपने अपने विद्यार्थियों को सिखाया उन्होंने कैसे हमारे सारे जीवन को हम यज्ञ बना सकते हैं, भगवान का दिव्य स्मरण में, कीर्तन में, कथा सुनने में। और हमारे शरीर के लिए जो कमाना होता है, शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए, उतना हम कमा सकते हैं। पांचवा लेसन है, एवं परंपरा प्राप्तम। भगवान ने बोला अर्जुन को कि ये भगवद गीता का ज्ञान जो है उसको तुम्हें परंपरा में स्वीकारना चाहिए। हाँ, और परंपरा के बाहर भी अनेक लोग हैं जो भगवद गीता का टीका लिखते हैं, उन लोगों से सुनना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी आप ट्रेन में जाते समय किसी बड़े टैंक में पानी रखा है, वो गंदा दिखता है, उसका वो साफ नहीं दिखता है, क्या हम पियेंगे उसको? उसको पीने से क्या होता है, व्याधि हो जाता है। लेकिन बिस्लेरी में पानी है तो हम पियेंगे उसको, क्योंकि वो साफ है। ऐसे ही परंपरा में आने वाला ज्ञान है वो साफ है, शुद्ध है। लेकिन जो परंपरा में नहीं आता है, हमें पता नहीं क्या वो साफ है कि नहीं, क्योंकि उसको स्वीकारने से हमारे अंदर जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए परंपरा में हमें स्वीकारना चाहिए। देखिए, अनेक लोग अनेक कमेंट्री देते हैं। कोई एक टीकाकार है, वो बोलते हैं कि ये भगवद गीता क्या है, वो सिर्फ आयुर्वेद के बारे में बताता है, वो बोलता है। वो भगवान बोलते हैं आयुर्वेद के संबंध में कुछ श्लोक बोलते हैं भगवान, क्या खाना चाहिए, क्या पदार्थ सत्वगुण में है, रजोगुण में, तमोगुण में है, लेकिन वो तो एक कोने में है भगवद गीता में। वो बोलता है कि यही भगवद गीता का सार है। और कोई है बोलता है कि अर्जुन जो है वो साइकियाट्रिक पेशेंट था, तो भगवान कृष्ण जो है वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, और अर्जुन को भगवान ने कुछ उपदेश दिया और उनका वो पेशेंट जो था वो ठीक हो गया अंत में, और हमको क्या लेना देना है भगवद गीता से? ऐसे बोलता है ये कमेंटेटर ऐसे। तो अलग अलग लोग अलग अलग गलत चीज़ों को निकालते हैं भगवद गीता से। तो कुछ लोग हैं बोलते हैं कि कृष्ण अर्जुन को तुम बाजू में रख दो, हमें ज़रूरत नहीं है भगवद गीता से, हम क्या करेंगे? देखो बोलते हैं भगवान, सुख दुख का समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान बोलते हैं शीत उष्ण में, सुख दुख में, मान अपमान में तुमको परिपक्व रहना है, बस। तुम कृष्ण को क्यों लाते हो, अर्जुन को क्यों लाते हो, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो लोगों को सही सही मालूम नहीं है भगवद गीता क्या है। प्रभुपाद जी एक गीता समिति के मीटिंग में गए थे प्रभुपाद जी। वो उस मीटिंग में देखा उन्होंने, ये सिर्फ उन्होंने दिया जला रहा था, वो लोग दिया जलाया था उन्होंने, वो भी शायद गीता जयंती का ही दिन था वो भी। तो प्रभुपाद जी मुड़ मुड़ कर देखा इधर उधर, उन्होंने देखा कि इधर क्या कृष्ण अर्जुन का तस्वीर नहीं है, हाँ कृष्ण का तस्वीर नहीं, हाँ कृष्ण का, राम का, किसी का कुछ नहीं है, आप लोग सिर्फ एक दिया जला रहे हैं इधर। अगर कोई राजनीतिक लोगों का मीटिंग होता है, उधर भी गांधी नेहरू का फोटो रखते हैं वो लोग, है ना? अगर इस तरह अगर कृष्ण का भगवद गीता के बारे में आप लोग गीता समिति का मीटिंग होता है तो कृष्ण का तस्वीर होना ही चाहिए उधर। तो वो लोग बोल रहे थे नहीं, हम निरंकार को मानते हैं, हम निराकार को मानते हैं, हम ऐसे बोल रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कि उसके बारे में वर्णन किधर है भगवद गीता में, किधर भगवान बोलते हैं कि मैं निराकार हूँ, दिखाओ भगवद गीता में। भगवद गीता में 12वें अध्याय में भगवान साफ साफ बोलते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान को, हे भगवान, दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक है आपके भक्त हैं जो आपको प्रेम करते हैं, आपके नाम जपते हैं, आपके गुणगान करते हैं, आपको भोग चढ़ाते हैं, आपके लिए गाते हैं, नाचते हैं, ये सब करते हैं। दूसरे हैं जो आपके निराकार ब्रह्म को उपासना करने वाले हैं। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन ने पूछा, साफ साफ प्रश्न, इतना सुंदर प्रश्न आप कहीं नहीं देखेंगे आप। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, भगवान क्या बोलते हैं? मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो भक्त मेरे ऊपर आ सकते हैं और सदा मेरा भक्ति करते हैं, श्रद्धया पर योपेतास्ते में युक्त तमामता, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करते हैं, पूजा करते हैं, वो भक्त ही श्रेष्ठ हैं, भगवान बोलते हैं। इसमें कुछ शंका है इसमें? तो तो प्रभु ने उन लोगों को डांटा, आप लोग क्या मीटिंग रखते हो। हाँ, तो इस तरह अनेक टीकाकार हैं जो गलत टीका देते हैं भगवद गीता के ऊपर। इसलिए हमें परंपरा में हमें सुनना चाहिए। जैसे 5000 साल के पहले भगवान ने भगवद गीता दिया अर्जुन को, लेकिन उस भगवद गीता में भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमको पहली बार दे रहा हूँ। बहुत समय के पहले मैंने विवस्वान को दिया, सूर्य के अधिष्ठाता विवस्वान को दिया मैंने, और विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह वो परंपरा में आता है ज्ञान, और मैं अभी तुमको दे रहा हूँ। और वही ज्ञान आता है 500 साल के पहले चैत्र महाप्रभु, 50 साल के पहले प्रभुपाद जी वही ज्ञान देते हैं। तो ये परंपरा में सुनना बहुत आवश्यक है सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये छठा लेसन है। ये भगवान बताते हैं कि जो समझता है कि मेरा जन्म और मेरे क्रियाएं दिव्य हैं, मैं एक साधारण मनुष्य नहीं हूँ लेकिन मैं दिव्य पुरुष हूँ, इस तरह जो समझता है, ऐसे व्यक्ति को इस भौतिक दुनिया में वापस पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता, लेकिन वो भगवत धाम लौट जाता है और मेरे धाम में आकर मेरे साथ नित्य लीला में प्रवेश कर लेता हुआ ऐसे व्यक्ति, ऐसे भगवान बताते हैं। इसका मतलब क्या है हम समझेंगे। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, आई एम द कॉज एसेंस एंड वेरी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। भगवान बोलते हैं कि वो ही सब चीज़ों का स्रोत्र हैं, भौतिक पदार्थों का, आध्यात्मिक चीज़ों का, सबका स्रोत्र वही है और वही सब चीज़ों के सार हैं। जैसे सार का मतलब है पानी में जो एक तरह का रुचि होता है वो भगवान बोलते हैं मैं वही रुचि हूँ, रसोहम अपसु कौनते। सूर्य में जो तेज होता है मैं ही वो तेज हूँ, भगवान बोलते हैं। सब चीज़ों में जो सार है ना वो मैं ही हूँ। और भगवान ये भी बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ को लो, उसमें जो श्रेष्ठ चीज़ है ना वो मैं हूँ, भगवान बोलते हैं। जैसे जो पक्षियाँ जो अच्छी तरह कलरव करते हैं ना, चिल्लाट करते हैं, उसमें सब पक्षियों में क्या पक्षी है जो बहुत मिठास के साथ गाता है? कोयल। तो कोयल का जो गाना जो है वो कृष्ण का गाने के समान है, भगवान ऐसे बोलते हैं। सब जानवरों में से बहुत शक्तिशाली जानवर क्या है? शेर। तो भगवान हम बोलते हैं कि सब सारे जानवरों में मैं शेर हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, सब आदित्यों अदिति के पुत्र में मैं विष्णु हूँ। सब जो धनुर्विद्या में निपुण लोग हैं उनमें से मैं अर्जुन हूँ, भगवान बोलते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। इस तरह भगवान अलग अलग चीज़ बताते हैं दसवें अध्याय में कि आप इस दुनिया में कुछ भी देखते हो जिसमें बहुत आकर्षण है। जैसे कोई बहुत सुंदर है, वो सुंदरता भगवान बोलते हैं कि मेरे से आता है वो। कोई बुद्धिमान है, वो बुद्धिमत्ता भी मेरे से आता है। कोई शक्तिशाली है, वो शक्ति भी मेरे से आता है, भगवान बताते हैं। बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। समझो अर्जुन, हाँ इस तरह। क्योंकि इस दुनिया में हम समझ सकते हैं कि ज़रूर कुछ लोग हैं दूसरों से ज़्यादा सुंदर हैं, कुछ लोग हैं दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कुछ लोग हैं दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो सब मेरे से ही आता है, भगवान बोलते हैं। इस तरह समझाते हैं। क्यों? क्योंकि सब भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। ये जो दिया गया है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य चापिक्तो शन्नम भगमिति गण। भगवान से ही सब सुंदरता, यश, धन, शक्ति और त्याग, ये सब सारे छः जो ऐश्वर्य हैं भगवान से आते हैं और भगवान इसके भंडार हैं। और भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, सब लोग बोलिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। अर्जुन, सब सारे दुनिया मेरे से ही निकलते हैं। भगवान जब सृष्टि करना चाहते हैं तब अपने को क्या करते हैं? विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं, महाविष्णु के रूप में। और महाविष्णु के शरीर से ही सब सारे दुनिया निकलते हैं, सब अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं विष्णु के शरीर से। इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब जीवों का पिता हूँ, सब सारे जीवों का। मैंने जैसे बोला था पहले, चाहे जानवर हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, सब में जो आत्मा है, इस आत्मा का पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। अहम बीज प्रदह पिता, मैं ही इन चीज़ों का मैं पिता हूँ बोलते हैं। और ये सारे प्रकृति में सब चीज़ इतने अच्छी तरह चल रहे हैं। जैसे सीजन बदलते हैं, अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के बाद विंटर आता है, गर्मी सर्दी मौसम बदलते हैं। जैसे सूर्य उगता है सुबह, सूर्य का उदय होता है, सूर्य का अस्तमन होता है। किसी दिन सूर्य भूल गया उठने के लिए सुबह, आपने देखा है कैसी कभी कभी दिन, एक भी दिन सूर्य भूला नहीं, हर दिन वो उठता है, उदय होता है सूर्य का। इससे मृत्यु भी इस दुनिया में होता है ना, सब लोगों का मृत्यु सही टाइम पर होता है। कैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा कि यमराज भूल गए, और एक आदमी का अभी 2000 3000 साल हो गया, अभी तक वो मरा नहीं, वो लिस्ट में मिस हो गया वो, ऐसा आप नहीं देखेंगे। सब एकदम ठीक ठाक होता है इस दुनिया में, है क्यों होता है? मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान बोलते हैं मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूँ, ऐसे बताते हैं भगवान। एक स्कूल का, कॉलेज का, कंपनी का एक अध्यक्ष होता है, लेकिन सारे प्रकृति का अध्यक्ष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम, सब इस भौतिक दुनिया में एकदम ठीक ठाक चल रहा है मेरे अध्यक्षता में, भगवान बताते हैं। देखिए बोलते हैं कि प्रकृति स्वामवष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः, हे अर्जुन मैं इन दुनियाओं को मैं सृष्टि करता हूँ, और उसके बाद जीवात्मा जीते हैं, उसके बाद मैं नष्ट करता हूँ सबको और वापस सृष्टि करता हूँ, और इन सृष्टि और संहार में मुझे समस्या नहीं होते, बहुत आसानी से मैं ये सब कर पाता हूँ, क्योंकि सब मेरी इच्छा के अनुसार होते हैं, ऐसे भगवान बताते हैं। और सब सारे सुंदर चीज़ें जो इस दुनिया में आप देखते हो, ये मेरे सुंदरता का एक छोटा अंश मात्र है। मेरा असली सुंदरता आप किधर देखोगे? भगवत धाम में, ऐसे भगवान बताते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ बोलते हैं मुख से, लेकिन भगवान ने ये दिखाया भी। यशोदा मई को अपने मुख के अंदर क्या दिखाया भगवान ने? सारे ब्रह्मांड को दिखाया है ना। कोई साधारण इंसान दिखा सकता है ऐसे? किसी के मुख के अंदर हम क्या देखते हैं? हाँ, तो भगवान के मुख के अंदर यशोदा मई ने देखा सारे ब्रह्मांड को, अपने को भी देखा उसके अंदर। और भगवान ने विश्वरूप दर्शन भी दिखाया, इतना बड़ा था विश्वरूप दर्शन, अर्जुन को पता नहीं चला कि किधर वो शुरू होता है किधर अंत होता है। वो सारों दिशाओं में वो नमस्कार किया उसने, पता नहीं किस दिशा में नमस्कार करना चाहिए उसको। तो विश्वरूप दर्शन क्या है? सारे दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उनको दर्शन दिखाया भगवान ने ऐसे। ये बहुत मशहूर श्लोक है जो भगवान कृष्ण के संबंध में, सब लोग बोलिए, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि हे भगवान आप ही सब ईश्वरों का ईश्वर हो, इस तरह बोलकर आपकी आदि कोई नहीं है, आप सब चीज़ों के आदि हैं और आपके स्रोत्र कोई नहीं है, ऐसे बताते हैं। तो इधर ये वेदव्यास जी हैं बैठे हैं, तो वेदव्यास भी वही बोलते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये सब सारे अवतारों का स्रोत्र है, 24 अवतार हैं, उसमें दशम अवतार श्रेष्ठ अवतार है, लेकिन वो सबका स्रोत्र कौन है? कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ये वेदव्यास बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, ये बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता में, सब लोग दोहराइए, आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोलते हैं भगवान को, हे भगवान ऐसा नहीं कि मैं आपको बुला रहा हूं कि आप भगवान हैं। वो बोलते हैं कि बड़े बड़े ऋषि हैं जैसे नारद, असित, देवला, व्यास, ये सब लोग बोलते हैं कि आप ही परम भगवान हो। जैसे आप देखते हो ये तस्वीर में सब ऋषि मुनि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान के गुणगान कर रहे हैं। इस तरह भगवद गीता में हमें ये बात की पुष्टि मिलता है कि कृष्ण कौन है, वो आदि परम सत्य है और सब चीज़ों का वही स्रोत है। और बड़े बड़े आचार्य हैं जैसे माध्वाचार्य है, रामानुजाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु, वो सब उन्होंने लिखा है अपने शिक्षण में कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये शंकराचार्य का बहुत मशहूर श्लोक है गीता महात्म्य में, सब लोग दोहराइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, इसका मतलब क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, क्या है देवकी पुत्र गीतम? भगवद गीता है वो। हाँ, वो सारे शास्त्रों में बहुत श्रेष्ठ शास्त्र बोलते हैं। एको देवो देवकी पुत्र एव, अनेक देवता हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? देवकी पुत्र एव कृष्ण है बोलते हैं। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक मंत्र है जो सब मंत्रों में से श्रेष्ठ है, वो कृष्ण का मंत्र है। इसलिए प्रभु जी लिखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और बोलते हैं कर्मापिएकं तस्य देवस्य सेवा, और कर्म में क्या श्रेष्ठ कर्म है? भगवान की सेवा। तो अगले स्लाइड में हमने दिखा है इसको, ऊपर जो राधा कृष्ण है वो क्या है? एकम एकम शास्त्र, राइट पर जो दिखा है भगवद गीता, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम वो है। और ऊपर दिखा है एको देवो देवकी पुत्र ये वह, और मंत्र बीच में दिखा है हरे कृष्ण मंत्र, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, तो कृष्ण की सेवा। ये सब चीज़ कौन बताते हैं? शंकराचार्य। अनेक लोग शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं जो बोलते हैं कि हम निराकार ब्रह्म में हम लीन होना चाहते हैं, लेकिन शंकराचार्य क्या बोलते हैं वहाँ उनको समझना चाहिए। सातवां लेसन है, ये भी बहुत मशहूर श्लोक है, भोक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कैसे हम इस दुनिया में शांति प्राप्त कर सकते हैं? भगवान बोलते हैं ये तीन चीज जो व्यक्ति समझता है उसको शांति प्राप्त होगा इस दुनिया में। बोलते हैं कि सब सारे यज्ञ और तपस्या का अंत में ये सब किया करना चाहिए, किसके लिए? कृष्ण की खुशी के लिए करना चाहिए। भगवान बोलते हैं लोग कठोर परिश्रम करते हैं इस दुनिया में खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। कुछ लोग फॉरेन चांस के लिए ट्राई करते हैं, कुछ लोग सिनेमा में चांस के लिए ट्राई करते हैं, कितना कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम परिश्रम करो भगवान की संतुष्टि के लिए। और बोलते हैं कि मैं सारे लोगों का मैं ही नाथ हूँ। जैसे वामन देव आए थे ना, उन्होंने दिखाया तीनों लोकों में पांव रखकर दिखाया कि सारे तीनों लोगों का मैं ही मास्टर हूँ। हाँ, और सब जीवों का शुभ चिंतक मैं ही हूँ, क्योंकि सबके हृदय में मैं परमात्मा के में अंतर्यामी के रूप में बैठा हूँ, और उनको मैं जो भलाई करना है वो मैं करता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि ये इस दुनिया में अलग अलग देवता के पास लोग जाते हैं ये सोचकर कि वो हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन जो भी देवता देते हैं उनको वो भी चीज़ मैं ही उन देवताओं को देता हूँ मैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं होलसेल डीलर हूँ और देवता लोग रिटेलर हैं, मैं ही उनको देता हूँ, मेरे पास ही आकर लेते हैं वो लोग। इस तरह भगवान बताते हैं। लेकिन वो देवता के पास क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि सिर्फ भौतिक प्राप्ति के लिए जाते हैं लोग। देवताओं के पास जाकर छोटे मोटे चीज़ों के लिए जाते हैं, लेकिन मैं ही उनको प्रदान करता हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में। और जो भी देवताओं को पूजा किया जाता है अंत में वो मेरे लिए ही आता है, जैसे सब नदियाँ समुद्र में जाते हैं, इस तरह अलग अलग देवताओं को किया हुआ पूजा अंत में वो देवता मेरे पास ही भेजते हैं, लेकिन अनेक लोगों को इस दुनिया में मालूम नहीं है इसके बारे में, ऐसे बोलते हैं भगवान। और भगवान देवताओं का ही नहीं लेकिन भगवान महाविष्णु का भी स्तोत्र है जिनसे सब सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और गर्भोदक्षा विष्णु और क्षीरोदक्षा विष्णु, ये सबका स्रोत्र भी भगवान कृष्ण ही है। और उसके बाद सब देवताओं का सृष्टि होता है अलग अलग ब्रह्मांड में। आठवां लेसन है, ये छठे अध्याय के लास्ट श्लोक में आता है, ये बहुत फेमस श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। अर्जुन, अनेक तरह के योगी होते हैं इस दुनिया में, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। वो बोलते हैं कि अनेक तरह के योगी हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन योगी है जो मुझे अपने मन में हमेशा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, और मुझे दिव्य भक्तिमय सेवा मुझे जो करता है, वो ही सबसे श्रेष्ठ योगी है। इस तरह भगवान अर्जुन को बताते हैं। ये भी भगवान बताते हैं भगवद गीता में, द थॉट्स ऑफ माई प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी, मेरे भक्तों का हमेशा चिंतन स्मरण मेरे ऊपर रहता है, वो मेरा स्मरण करते हैं। देयर लाइव्स आर फुल्ली डिवोटेड टू माई सर्विस, वो अपने सारे जीवन को मेरे सेवा में लगाते हैं। इधर जो दिखाया गया अलग अलग सेवा दिखाया गया है भक्त लोग करते हैं, मत चित्ता मत गत प्राण आबोधे यंत परस्परम, दे डिराइव ग्रेट सैटिस्फैक्शन एंड ब्लिस फ्रॉम ऑलवेज एनलाइटनिंग वन अनदर एंड कन्वर्सिंग अबाउट मी। टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाई विच दे कैन कम टू मी। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मेरे शुद्ध भक्त का मन हमेशा प्रेम मैं सेवा में जुड़ा हुआ है मुझसे। भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीति के साथ वो सेवा करते हैं। ये प्रीति का मतलब क्या है, अपने हृदय को लगाकर, ये प्रीति है। जैसे एक पुरुष होता है अपने पत्नी अपने बच्चों के बारे में बहुत वो चिंतन करता है, उनको खाने के लिए मिलना चाहिए, उनको रहने के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, तो उनके लिए कभी कभी वो खुद की जो सुख सुविधाओं को भी वो त्यागता है। इस तरह जो भगवान से प्रेम करते हैं वो प्रीति के साथ भगवान की सेवा करते हैं, ये भगवान बताते हैं। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, तो मैं ऐसे भक्तों को मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि से वो मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सिखाया प्रभुपाद जी ने। हम रोज़ सुबह उठते हैं, अभी ठंडी बजता है सुबह फिर भी लोग उठते हैं सुबह, क्यों क्यों उठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रीति नहीं है, फिर भी प्रभुपाद जी के आदेश है कि हमें उठकर जपना चाहिए, इसलिए हम उठते हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तभी हमारे अंदर प्रेम भी आएगा, प्रेम के साथ हम भगवान की भजन कर सकते हैं। लेसन 9, वन शुड परसीव द ईविल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनके इन चीज़ों जो इस दुनिया में चार तरह के बहुत गौर तकलीफें हैं, इसको आदमी को समझना चाहिए, देखना चाहिए इस दुनिया में। भगवान बोलते हैं जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, लेफ्ट में एक बच्चे को दिखाया गया है योनि में जो बच्चा है, राइट में क्या दिखाया गया है, मृत्यु। तो इस तरह फ्रॉम द वूम टू द टूम, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को तरह तरह की तकलीफ होता है बीच में भी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली समस्या है हमारे जीवन में। अनेक लोग इन समस्याओं के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अब अगर आप एक आदमी को बुलाकर पूछो तो तुमको कुछ तकलीफ है कि नहीं जीवन में, वो बोलेगा कि हमारे फ्लैट में पानी रोज़ 24 घंटा नहीं आता है, उसको सेटरेट करना है। कोई कोई बोलते हैं हमारे सोसाइटी में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी चाहिए हमको। तो अनेक लोग हमारे उनके छोटे मोटे समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं हमेशा, इसको कैसे ठीक करें उसको कैसे ठीक करें, लेकिन कोई सोचता नहीं कि अरे बूढ़ा बूढ़ा पाने वाला है, मृत्यु आने वाला है, अगले जन्म में क्या होगा, कुत्ता बिल्ली होगा नहीं तो मनुष्य होगा, क्या होने वाला है, मुझे कोई सोचता नहीं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि हमारी असली लक्ष्य है भगवत धाम लौटना। इधर जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये अजामिल का है। अजामिल अपने अंतिम 12 साल को हरिद्वार में बिताया उसने, हर नाम भगवान के करते हुए शुद्ध होकर वैकुंठ से एक वाहन आया था उसको लेके जाने के लिए, ये विष्णुदूत हैं। तो हम सबको भी इस तरह वैकुंठ पदवी प्राप्त करने की मौका है हमारे हाथ में मनुष्य जीवन में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं इसके बारे में, हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, अपने अंतिम लक्ष्य जो है भगवत धाम वापस लौटना है, उसके ऊपर ध्यान रखकर जीवन जीना चाहिए। हाँ, ऐसे भगवान बताते हैं कि आत्मा जो है वह भगवत धाम से ही आता है। हम भगवान के धाम में, हमारे एक स्वरूप है, उसको भूलकर हम इस भौतिक दुनिया में इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। हाँ, जैसे कठोपनिषद में बताया गया है, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम एको बहु नाम, भगवान एक है और राम अनेक हैं, और भगवान मालिक हैं और राम भगवान के दास हैं। और ऐसे हमारे रिश्ता जो है असली परिवार, वो भगवत धाम में है। जैसे भगवान और उनके पार्षद जो होते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ कूदते हैं, भगवान भगवान के साथ अनेक तरह की लीलाएं करते हैं। जैसे इधर आप देखते हैं कृष्ण बलराम की पाँव पकड़ रहे हैं इधर, और कोई बच्चा है जो कोई गा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है, कोई गा रहा है ऐसे। तो भगवत धाम में असली परिवार है, असली जीवन है। जैसे इस दुनिया में भी हम लोग जब हम घर में रहते हैं, हम सुबह उठते हैं, हमारे अलग अलग तरह के कार्यकलाप होते हैं, कंपनी में जाना होता है, किसी को कुकिंग करना होता है, किसी को पढ़ाई करना होता है, लेकिन इस दुनिया और भगवत धाम में क्या फ़र्क है? इस दुनिया में हम मृत शरीर के अंदर बैठे हैं जो हमेशा तकलीफ देता रहता है। जैसे मेरा अभी खांसी है, मैं ठीक तरह से बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि भौतिक शरीर में हम बैठे हैं। जब तक हम भौतिक शरीर में बैठे रहेंगे ना, उतना हमेशा किसी न किसी तरह का टेंशन रहता है। बचपन में टेंशन रहता है, स्कूल जाना है, उसके बाद टेंशन रहता है, नौकरी मिलना है कॉलेज में, है नौकरी मिलने के बाद टेंशन रहता है, परिवार की टेंशन रहता है। तो हमेशा हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में तकलीफ रहता है। लेकिन भगवत धाम में भी हमें शरीर होता है, लेकिन दिव्य शरीर होता है, सच्चिदानंद आध्यात्मिक शरीर, और उधर भी अनेक क्रियाएं होते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ जिम्मेदारी नहीं है उधर, कंपनी जाने का, कमाने का, और इतना जिम्मेदारी लेने का, ये सब करने की जरूरत नहीं भगवत धाम में। हाँ, उधर सिर्फ नित्य लीला है भगवान के साथ। जैसे इधर माधुरी रस में हम देख रहे हैं गोपियाँ नाच रही हैं भगवान के साथ। हाँ, इस तरह अलग अलग रसों में, माधुरी रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में, इस तरह लीला होता है। तो इस तरह के भगवत धाम के बारे में भगवद गीता में भी वर्णन है इसके बारे में। देखिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में इसके बारे में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। दैट सुप्रीम अबोड ऑफ माइन इज नॉट इल्यूमिन्ड बाय सन और मून नॉर बाय फायर और इलेक्ट्रिसिटी, दोज़ हू रीच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। भगवान बोलते हैं कि वो मेरा धाम जो है, उधर सूर्य चंद्र की ज़रूरत नहीं है, सूर्य चंद्र इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जीव स्वयं प्रकाशक हैं उधर, और जो उधर पहुंच जाते हैं वो लोग वापस लौटते नहीं इस भौतिक दुनिया में, बोलते हैं भगवान। तत् धाम का मतलब है वो धाम, परमम मम मेरा है भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण का। तो इस तरह भगवद गीता में वर्णन है, अनेक श्लोक हैं इसे भगवद गीता में भगवत धाम के बारे में। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? उस धाम में वापस लौटना। ये लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 10। ये सबको मालूम है श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब तरह के धर्मों को त्याग दो और मेरा शरण लो, भगवान बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? क्यों भगवान बोल रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग दो? ये तो लोग अच्छी तरह करते हैं, त्याग देते हैं सब धर्मों को। पहला चीज लोग करते हैं, दूसरा चीज भूल जाते हैं लोग, सब धर्मों को त्याग देते हैं लेकिन भगवान का शरण नहीं लेते हैं। और कलयुग में तो लोग आसानी से धर्म को छोड़ देते हैं। इधर भगवान के बोलने का मतलब क्या है? शास्त्र बोलते हैं कि जो आदमी लापरवाही होता है, जो शराब पीता है और अपने पत्नी बच्चों को भूलकर वो सड़क में गिरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता को तुम भगवान के समान मानो और पत्नी बच्चों को संभालो, माँ बाप को, यही तुम्हारे जीवन का धर्म है बस। अगर कोई व्यक्ति है अपने पत्नी बच्चों को संभालता है, माँ बाप को संभालता है, उसको शास्त्र बोलते हैं कि ये क्या बड़ी बात है, वो कोई भी कर सकता है। तुम्हारा धर्म है क्योंकि प्रकृति से तुम बारिश लेते हो, दाने लेते हो, ये सब लेते हो, जो देवता देते हैं सब चीज़, उन देवताओं की तुम पूजा करो। तो कोई कोई बोलता है ठीक है मैं देवताओं की पूजा करता हूँ, जब लक्ष्मी पूजा आता है लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा, सब अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उनको शास्त्र बोलते हैं कि यह क्या बड़ी बात है, क्योंकि देवताओं को पूजा करके उनसे जो भौतिक लाभ प्राप्त होता है, ये जो करता है वो भी अल्प बुद्धि वाले हैं, ऐसे भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में, तद भवति अल्प मेधसा। तो आप पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए, तभी शास्त्र बोलते हैं कि देखो देवताओं को पूजा करने से तुम भौतिक दुनिया में हटक जाओगे, क्योंकि तुम स्वर्ग में जाओगे, पुण्य खत्म होने के बाद वापस भूमि में लौट जाओगे तुम, क्योंकि ये स्वर्ग नरक ये सब भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही है। इसे तुमको क्या करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का चिंतन करो और ये चार नियमों को पालन करो, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, इसको पालन करो। ये तो कठिन चल सकता है कुछ लोगों को, इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तुमने पहले जो अलग अलग धर्म को पालन किया, तुमने देश धर्म, मानव धर्म, इसको पालन किया, उन चीज़ों को त्याग कर तुम ये उच्च कोटि का जो भागवत धर्म है, जो मेरा शरण, उसको तुम अपनाओ, ऐसे भगवान बोलते हैं अर्जुन को। माम एकम शरणम व्रज, और डरो मत, भगवान बोलते हैं मैं तुमको आश्रय दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान की कैसे शरण जाना है, ये नौ तरह के विधि है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो अलग अलग उदाहरण दिया गया है इधर। श्रवण किसने श्रवण किया, परीक्षित महाराज। किसने कीर्तन किया, कीर्तन का मतलब है जो भागवत का पठन किया, सुखदेव गोस्वामी। स्मरण के लिए क्या उदाहरण दिया है इधर, प्रहलाद महाराज की, और पाद सेवनम लक्ष्मी जी की, और अर्चनम, अर्चनम के लिए उदाहरण दिया शास्त्र में पृथु महाराज के, और वंदनम अक्रूर, और दास्यम हनुमान जी की, साख्यम अर्जुन की, और आत्मनिवेदनम कंप्लीट, ये बलि महाराज की उदाहरण दिया जाता है आत्मनिवेदन के लिए, जो जिन्होंने अपने सब सारे चीज़ों को दे दिया भगवान को। ऐसे तो ये नौ तरीके से हम भगवान की हम सेवा कर सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल के पहले आकर सिखाया उन्होंने कैसे हम कृष्ण भक्ति करना चाहिए, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया नित्यानंद प्रभु को, हरिदास ठाकुर को, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे घिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। उन्होंने बोला घर घर में जाओ, कटकटाओ, लोगों को बुलाओ, जब बाहर आएंगे तुम क्या करो, उनको बोलो बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम जपो, बजो कृष्ण, कृष्ण की पूजा करो, करो कृष्ण शिक्षा। ये कृष्ण शिक्षा जो है भगवद्गीता, इसको लागू करो अपने जीवन में और दूसरों को भी इसको प्रदान करो। तो हमारा संस्था जो है ये प्रचार का संस्था है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है इसे। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कूर्मा ब्राह्मण, दक्षिण भारत में था वो। चैतन्य महाप्रभु ऐसे चलते चलते उनके घर के द्वारा गए, तो जब उनके घर में गए थे चैतन्य महाप्रभु, तभी ये कूर्मा ब्राह्मण ने बोला महाप्रभु को कि महाप्रभु आपको देखकर मुझे इतना आनंद आ रहा है, आप तो सन्यासी हैं, हमेशा आप इस तरह की इस दुनिया के किसी भी तरह का चिंता नहीं है आपके मन में, चिंता नहीं है। वो बहुत धनी आदमी था वो कूर्मा ब्राह्मण, वो गरीब नहीं था वो, ही वॉज अ वेरी ऑपुलेंट ब्राह्मणा। फिर भी वो बोला कि इस दुनिया के लहरें जो हैं मेरे जीवन में आकर मुझे सता रहे हैं, जैसे समुद्र में लहरें आते हैं, मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं आपके साथ में यात्रा में चलना चाहता हूँ। आपने बोला नहीं नहीं कूर्मा ब्राह्मण, तुम घर में रहो और तुम्हारे कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन तुम क्या करो, ये उपदेश दिया उन्होंने, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उनको ये उपदेश दिया था उन्होंने, सब लोगों को ये कृष्ण का उपदेश जो है उसको तुम फैलाओ, तभी तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह का भौतिक लहरें तुमको सताएंगे नहीं। आप सब लोग जिधर आए हैं आज, माताएं हैं, प्रभु जी हैं, हम सब आए हैं, आपके अनेक घर की जिम्मेदारियां हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं आपको, लेकिन जितना आप अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाएंगे उतना आप भगवान आपके भौतिक समस्याओं को बुला देंगे। आप भूल जाएंगे आसानी से। भगवान के लिए आप टेंशन लीजिए तो आपको जीवन, भौतिक जीवन के लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको टेंशन को बदलना है। क्योंकि जितना लोग मंदिर में अक्सर आते हैं, सेवाएं करते हैं, उतना उनके जीवन में भौतिक टेंशन कम होते जाते हैं और उनको भगवान के लिए वो परिश्रम कर सकते हैं। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु का फार्मूला है। और इस डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं, जो ये भगवद गीता जो है इसको फॉरेन अमेरिका में जाकर वितरण करके सारे दुनिया में उन्होंने मंदिर बनाया था, जैसे मॉन्ट्रियल, बॉस्टन, लंदन, बर्लिन, और नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप, सब सारे जगह में देखिए बड़े बड़े मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने। उनके बूढ़े अवस्था में 12 सालों में उन्होंने 108 मंदिर स्थापन किया। अब प्रभुपाद ने बोला कि देखो मैं बूढ़े बूढ़े अवस्था में इतना किया हूँ मैंने, और आप लोग और कितना कर सकते हो। ऐसे बोला था प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद जी की किताबें हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और दूसरे किताबें, 80 से भी ज़्यादा किताब प्रभुपाद जी ने लिखा है। ऐसे तो पुणे में अभी प्रभुपाद मैराथन शुरू हो गया है, यही तारीख है, 25 नवंबर से शुरू हुआ, अभी 25 दिसंबर तक। तो हम आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। कितने लोग ऑलरेडी भाग ले रहे हैं प्रभुपाद मैराथन में, हाथ पकड़िए, देखिए ये सब लोग भाग ले रहे हैं ऑलरेडी, और आप दूसरे लोग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके आने वाले संडे जो है 3 दिसंबर को पूरे दिन हमारे सब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में समय बिताने वाले हैं, इसलिए आने वाले संडे को संडे फीस नहीं होगा, संडे फीस लेक्चर नहीं होगा। और हम सब ब्रह्मचारी, सब गृहस्थ लोग, हमने सोचा कि एक पूरा दिन देंगे, टाइम देंगे आपको, क्योंकि दूसरा दिन आपको टाइम नहीं मिलता है, बहुत बिजी रहता है दिन में, इसलिए संडे को बहुत लोग मिलते हैं आपको। और आप सब लोग किताब लेकर वितरण के लिए चले जाइए। हर साल हम ऐसा करते हैं, पिछले साल भी मैराथन के समय श्री गुरुचरण प्रभु ने अनाउंस किया था ऐसे फुल डे बुक डिस्ट्रीब्यूशन संडे को। आप अपने घर में से सीधा आप निकल सकते हैं वो किताब वितरण के लिए। और आप किताब वितरण करके किसी को भक्त बना दिया आपने तो आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। क्या है कमीशन वो बताते हैं नित्यानंद प्रभु, बोलते हैं कि वो कमीशन पैसा का कमीशन नहीं, दूसरा कमीशन नहीं, लेकिन भक्ति का कमीशन मिलेगा आपको। जैसे ध्रुव महाराज की माँ ने ध्रुव महाराज को जंगल में भेजा था, तुम भगवान के दर्शन करके आओ। जब भगवान के दर्शन प्राप्त हुआ ध्रुव महाराज को भी, ध्रुव महाराज के माँ को भी कमीशन मिल गया। क्या था? तो ध्रुव महाराज को जब भगवत धाम लेके जाने के लिए जब ये विमान आया था वैकुंठ से विमान, तो ध्रुव महाराज ने पूछा कि मेरे माँ की क्या है, मेरी माँ को मैं छोड़ कर आऊँ? तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे चल रही है दूसरे विमान में। ऐसे इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि अगर आप एक भक्त भी बनाओ, अच्छा भक्त को बनाओ इस दुनिया में, तो आपके टिकट रिजर्व हो जाएगा भगवत धाम लौटने के लिए। इसलिए मैं आप सबको विनती करता हूँ कि ये मैराथन में अच्छी तरह भाग लीजिए, और खास करके 3 दिसंबर को फुल डे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, 3 दिसंबर को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह गीता जयंती के महोत्सव के समय जो 10 खास शिक्षण जो है उसको मैंने लिया, संक्षिप्त रूप में हमने बताया, लेकिन अगर आप भगवद गीता यथारूप, नहीं तो जशी है तशी, एज इट इज़ लेकर पढ़ेंगे, आपको और भी विस्तृत रूप से इन सब शिक्षणों को और भी आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। गीता जयंती महामहोत्सव की, कृष्ण भगवान की, श्री श्री राधा कुंज, श्री श्री गौर निताय की।